आपने आवाज़ जब बन गई आपकी, जब वो सांचे में ढल गई, तो फिर आपका तरीक़े तालीम क्या था और ये आपने किससे शुरू किया, मतलब आपके वालिद मरहूम से?
अब वो तो शुरू में मैंने बताया ना कि हमारे वालिद साहब ने वो सब बरतावे के रागों का हमें मालूमात दे दी थी
जी।
उस वक्त मेरी उम्र 8 बरस की थी, उसी वक्त जबान खुलते ही बस वो अपने ब्लैक में लेटे हुए हैं और बता रहे हैं
जी।
उससे काफ़ी मालूमात हो गई थी, लेकिन कुछ कुदरती देन भी थी।
अच्छा जी हाँ।
इसलिए कि फैयाज़ खान साहब जब अतौली आए तो हमारी वालदा साहबा ने कहा उनको कि भाई साहब ज़रा इस बच्चे को सुनिए आप
जी।
अब 8 बरस के बच्चे को क्या सुनवा सकते हैं,
बेशक,
या उसमें क्या वो सीख सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ज़रा सुनिए
जी।
जो सुनता था ताज्जुब करता,
बेशक।
तो ऐसा ही एक बसंत का ख्याल मैं शुरू हो गया। फैयाज़ खान साहब ने सुना, उन्होंने कहा कि अरे ये तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा होनहार है, ये तो साल 2 साल में ही बिल्कुल गाने लगेगा बेहतरीन और गा रहा है
जी।
हमसे कहा बेटा ताने लो, ताने हमने लिए उसमें
जी।
तो दिमाग कुछ इस किस्म का था कि वो उसमें सब बातें अस्थाई या ख्याल
जी हाँ,
जो कुछ भी हमें हमारे वालिद ने बताया उसके पूरे सुर उसी तरीके से फिट हो जाते थे, उसमें गलती ज़रा सी भी नहीं होती।
ये तो अभी आपने इब्तदाई अपनी तालीम की बात जो की है, क्या आपने कुछ थोड़ा वक्त सादे पलटे और अलंकार पलटों में भी लगाया?
हाँ जी हाँ, पहले तो ऐसा था कि खरज भरी
जी,
और खरज भरने के बाद एक एक सुर करके ऊपर आए
जी हाँ,
और अपने सुर पर आ गए, उसको फिर सुर को फैलाया, आवाज़ को बढ़ाया, सांस को बढ़ाया।
अच्छा।
और उसके बाद फिर नीचे ही नीचे मंद्र से
जी
तार तक,
वाह,
ये पलटे
जी हाँ,
और उसमें एक जोर
जी,
दानों में जोर। आप देखिए कभी कभी तान कोई ऐसी निकल जाती है कि ये मालूम होता है कि हम खुद भी नहीं सोच सकते कि ये इतनी तगड़ी तान कैसे गई।
जी हाँ,
मालूम होता है कि जैसे भैया खान साहब को देखिए एक बात याद आ गई।
जी हाँ ज़रूर बताइए, इंतहाई दिलचस्प होगी वो।
अता हुसैन खान साहब कह रहे थे कि मैं मारवा गा रहा था और कच्ची छत थी
जी,
तमगा मेरे हाथ में, मैं गा रहा, पीछे से भैया खान साहब आए। अता हुसैन खान साहब को पता नहीं था कि वो पीछे से आ गए हैं
जी,
उन्होंने ही करके तान जो मारी
जी हाँ,
तो वो कहते हैं कि इस कदर वो ज़ोरदार तान थी और उसके दाने ऐसे थे कि मट्टी छत में से गिरने लगी
जी,
और हाथ में से तमूरा छूट के उनके गिर गया
जी।
तो ये बातें पैदा करने के लिए बुज़ुर्ग सब ऐसा कराते थे। अब ये माइक का ज़माना अब आया, लेकिन पहले के बुज़ुर्ग जो थे
जी हाँ,
वो तो उसी तरीके से कराते थे ना
जी हाँ।
तो ये सब बातें जो पुराने बुज़ुर्गों का तरीका था उससे ये सब बातें पैदा हो जाती थी। जितना वो ज़ोर से गाएं जितना वो उसमें असर भी होता था,
असर भी है,
रुला देते थे
जी हाँ।
और रोते हुए मैंने खुद देखा उस्ताद फैयाज़ खान साहब के गाने में रोते थे लोग, बात तो क्या बात, आवाज़ में एक ऐसा दर्द होता था और ऐसी एक खुलासियत होती थी कि गंधार पे जाके जैसे काफ़ी की वो है खेलत नंद कुमार
जी,
इसमें मैंने अक्सर लोगों को रोते देखा।
वाह।
जहाँ गंधार पे गए उन्होंने उसको खोल के लगाया
जी,
तो आंसू बेसाख्ता निकल जाते थे। तो उसकी वजह यही थी कि वो आवाज़ पाकदार, और एक सुर को आप आहिस्ता से लगाइए, उतना जोर नहीं देगा, वही सुर सच्चा लगे जोर से
जी,
तो वो दिल पे जाके असर करता है
जी। अभी आपने बुज़ुर्गों का नाम लिया, तो क्या आप अपने घराने के चंद बुज़ुर्गों के नाम बताएंगे? क्योंकि जाहिर है कि हमारे सुनने वाले और ख़ुसूसन आज का नौजवान तबका जो है वो इन तमाम चीज़ों से नावाकिफ़ है।
ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग गुजरे हैं कि जिनकी मिसाल नहीं,
क्या कहने।
अब मैं अपने दादा साहब का बताता हूँ
जी,
उस्ताद महबूब हुसैन खान साहब
जी।
तो फैयाज़ खान साहब का चढ़ता हुआ ज़माना था और बहुत सारे हिंदुस्तान में उनका नाम हो रहा था। वो कहते थे उस वक्त के इमली के पत्ते पर हाथी नाच रहा है।
वाह।
ऐसी ताने मुश्किल और ऐसे
क्या कहने
वो सब कुछ थे। तो हमारे दादा साहब बैठे हुए थे और वो भैया खान साहब सतगुरु रहो मन मेरे ये गा रहे थे।
वाह।
बराबर में मकान दूसरा
जी।
तो उन्होंने कहा कि भाई फैयाज बुलाया, यहाँ आओ बेटा, ये सतगुरु रहो मन मेरे तुम जो कह रहे हो
जी
वाकई बहुत अच्छा है, बड़ा असरदार है, लेकिन ऐसे कहो ये फैयाज खान साहब ने मुझे सुनाया।
अच्छा।
तो अस्थाई उन्होंने शुरू करी तो अव्वल तो सांस उनका इतना बड़ा था कि फैयाज खान साहब कहते थे कि मेरा दम घुटने लगा।
ओफ ओफ,
पूरी अस्थाई एक सांस में उन्होंने भरी
जी,
और एक जरा सा लटका था।
वाह,
तो ये जो मैंने हिलाया
जी हाँ,
ये उसमें कुछ ऐसा दर्द था और कुछ इस अंदाज से वो हिलाते थे कि फैयाज खान साहब कहते थे कि मैंने कोई 50 बार कोशिश करी कि वैसा कह दूं लेकिन नहीं। तो बड़े अच्छे अच्छे बुजुर्ग गुजरे उन्होंने।
खान साहब, आप काफ़ी अरसे उस्ताद फैयाज खान साहब के पास बड़ौदे में रहे, तो क्या उनका तरीक़ा तालीम कैसा था, आपका इस सिलसिले में क्या तजुर्बा रहा है?
ये सवाल आपने ऐसा किया कि वो मंजर मेरे सामने आ गया और मैं कहता हूँ कि उनसे सीखना किसी के बस का काम नहीं था
जी।
भैया खान साहब से सीखना बड़ा मुश्किल काम था
जी।
उनका बताने का तरीका, एक तो पहले ये बता दूं कि दिमाग इतना अच्छा होना चाहिए था कि इधर उन्होंने कहा कि फौरन वो याद कर ले और सुना दे, एक दफ़ा गलती माफ, दो दफ़ा गलती माफ। लेकिन फिर तीसरी दफ़ा जो उनका जूता चलता था तो वो फिर बड़ी बुरी तरह से पिटाई। तो धुरपद मैं गाने में सीखने में खान साहब से कभी नहीं पिटा, इसलिए कि बहुत ही तेज़ दिमाग था। वो कहते थे कि ये बच्चा तो कुदरत ने अपने हाथ से बनाया है, इसको हम बताते हैं इतना सा इतना अपने आप बढ़ जाता है,
क्या कहें।
लिहाजा वो और कुछ थोड़ी सी चालाकी भी थी, ऐसी जगह बैठते थे कि दो एक दफ़ा सुनने को मिल जाए
बेशक।
तो अब वो उन्होंने कहा कि हाँ भाई बोलो, ए अब इतना उन्होंने कह दिया तो अब बताइए कि इतना कौन याद करे।
बेशक,
तो ऐसी ऐसी तासीरें थी। हमारे दूसरे दादा मुंशी गुलाम हुसैन खान साहब
जी,
बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े
आलिम,
आलिम संगीत की, और आने जाने का सिलसिला, लेन देन का सिलसिला भी रहा
जी। हाँ,
मतलब वो एक ही खून है, इधर से हमने सीखा उधर से उन्होंने सीखा, ऐसा आगरा घराना अतौली घराना वो सब एक ही रहा।
तो पुराने बुजुर्गों का ये कौल रहा है कि जैसे अभी आपने कहा ना कि जिस जो बंदिश हम सीखते हैं उसमें राग का रूप भी आ जाता है, तो क्या ये उनका एक उसूल था शागिर्द को बताने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदिशें, मान लीजिए जैसे जौनपुरी है तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा ये 18 बंदिशें हैं इसको याद कर लो और अमन में इतनी हैं। तो ये जो आपको तालीम मिली है क्या उसका दारोमदार भी इस पर था?
हाँ, भर्ती कराते थे, पहले भर्ती कराते थे, रागों की भर्ती कराते थे, ये हेमंत कल्याण है, ये कल्याण है और ये सब कल्याण, ये श्याम कल्याण, कल्याणों की और कानों की और कौसों की और कौसियों की और क्या क्या ऐसी किस्में, उसके पहले शुरू में ऐसे ही करते थे, भर्ती कराते थे। अब भर्ती से ही उतना नॉलेज हो जाती थी, इतना दिमाग खुल जाता था कि उसमें बढ़त करने के लिए वो बड़ा सब कुछ आसान पड़ता था, और फिर उनको इशारा करने की ज़रूरत होती थी, बढ़ने लगती थी
जी।